وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين
اللهم صل على
تیرہ رجب المرجب کی مناسبت سے کہ میلاد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, آپ سب مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے. تیرہ رجب ایک عظیم و بابرکت دن ہے کہ جہاں پہ یہ میلاد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے, وہاں پہ یہ ایام بیض جنہیں کہا جاتا ہے اس سے بھی معروف ہیں. 13, 14 اور 15 رجب کے اسے اعتکاف کے خصوصی ایام کے طور پہ بھی گردانا جاتا ہے, اس عنوان سے یہ معروف ہیں اور انتہائی فضائل وارد ہوئے ہیں. 13, 14 اور 15 رجب کے روزوں کا بھی انتہائی تاکید اور فضیلت وارد ہوئی ہے اور اس کے علاوہ خصوصی اعمال بھی ہیں. لہذا یہ ایام اس حوالے سے چند جہات سے یہ معنویت اور برکات اور رحمات کو لیے ہوئے ہمارے لیے ایک توفیق الہی اگر نصیب ہو تو ان برکات اور رحمات سے انشاءاللہ استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. روزے آج کے دور میں زیادہ مشکل اس لیے نہیں ہیں کہ گرمیاں نہیں آئیں اور سردیوں کے اختتام کے دن ہیں, اس لیے روزے آسان ہیں. جیسا کہ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ سردیاں خزاں کا موسم مومن کی بہار ہے, کیونکہ راتیں طویل ہوتی ہیں تو نماز شب پڑھنا آسان ہے اور دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے, اور اس قدر برکات اس کے بعد پورے سال انسان کو نصیب نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں توانائی کم خرچ ہوتی ہے اور ثواب اور عبادات انسان کثرت سے لے لیتا ہے. 13 رجب کی مناسبت سے ذکر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں بعض پہلوؤں سے بیان کیا جاتا ہے. بہت سارے پہلو ہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگانی کا جائزہ لیا جائے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات بقیہ ائمہ علیہ السلام کی نسبت زیادہ وارد ہوئے ہیں. اہل سنت کتب میں بھی وارد ہوئے ہیں اور شیعہ کتب میں بھی وارد ہوئے ہیں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائے اسلام سے ان کے کارنامے موجود ہیں. مدینہ منورہ میں جب ہجرت کی اس کے بعد اسلام کا پرچم جو اس سرزمین کے اوپر لہلہایا, اور شرک اور کفر اور نفاق ان کے ایوان لرز گئے اور سارے کے سارے مشرکین کے بت جو ٹوٹے, اس میں نمایاں ترین کارنامہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اور اس قدر فضائل اور کمالات تھے کہ ہر صدی میں رہنے والا بشر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے متاثر ہوا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے کثیر فضائل امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں وارد ہوئے, جن میں سے بہت کم ہم تک پہنچے ہیں. اکثر اور بیشتر وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض اور دشمنی نے ہم تک پہنچنے سے معنی بن گئے, لیکن اس کے باوجود جو فضائل اور کمالات ہم تک پہنچے ہیں اگر انہی پہ دقت کی جائے تو انسان بلا شک و شبہ اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی تمام خلقت میں تو وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے بعد زمانۂ رسالت کے بعد دوسرا دور بھی ایک طویل دور ہے, اور اس دور کے حالات بھی ہمارے تک پہنچے ہیں. البتہ وہ مفصلاً حالات ہم تک نہیں پہنچے, اس کی بنیادی وجہ وہی دشمنی اور بغض ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید بغض اور دشمنی رکھی گئی, یہاں تک کہ ان کے ذکر کو مٹایا گیا, ان کے ایک انتہائی منفی چہرہ اور شخصیت معاشروں میں رائج کی گئی, پروپیگنڈا کیا گیا, غالم گلوچ اور لانتان کی گئی. لیکن اس کے باوجود جو قلیل تذکرہ بھی پہنچا ہے وہ بھی چند جلدی کتابوں پر مشتمل ہو جاتا ہے کہ اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات وافر طور پہ ہم تک پہنچتے, یا ائمہ علیہم السلام کو موقع اور فرصت مہیا ہوتی کہ شخصیت امام علی علیہ السلام کو بیان کریں, تو हज़ारों किताबें, हज़ारों जिल्द किताबें हमारे सामने आज मौजूद होती। आपके सामने सिर्फ एक छोटा सा मौजू इस हवाले से बयान किया जाता है कि कमालात और फ़ज़ाइल हम सुनते रहते हैं, इसके अलावा इमाम अलैहिस्सलाम की लिसान अथर से इस कदर बुलंद मानी सादिर हुए हैं कि अगर हम एक ही कौल को बयान करें तो शायद कई हमारे, वो भी हमारी कम इल्मी और कम बसात इल्मी के तौर पे, जो चंद चीज़ें सामने आती हैं, यानी एक ज़र्रा इल्म क्या बयान करे एक बाहरे इल्म के बारे में। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम की जो मारिफ हम उन्होंने पेश किए हैं, हर इंसान अपने फ़हम और जहन की वसअत के मुताबिक उसे लेता है, और यकीनन हमारे फ़हम और वसअतें बहुत कलील हैं। हमारे इल्मी ज़रूफ़ और मानवी और बातनी जो हदूद हैं वो बहुत मुख्तसर हैं, और अगर उन मुख्तसर तौर पे भी हम गौर व फ़िक्र करें और हदूद से काम लें तो फिर बहुत तवील गुफ्तगू बन जाती है। कुछ ये कि जो अहल है और वो इमाम मासूम ही हैं कि वही एक मासूम हस्ती को आके बयान करें कि यह हस्ती क्या थी। इमाम अलैहिस्सलाम के इंसानी ज़िंदगी से मरबूत बेशुमार अक़वाल हैं, हिकमतें हैं, और उन्हीं के अक़वाल और हिकमतों से सिर्फ मुस्लिमीन नहीं गैर मुस्लिम भी इस्तफादा हासिल करते हैं। अभी हम इन सब चीज़ों पर, यकीनन इन सब चीज़ों को घेरना इंसानी बस से बाहर है। हम जिस मौजू को आज आपके सामने पेश कर रहे हैं वो मौजू हमारे सामने आता है शुमाइल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, यानी शक्ल सूरत कैसी थी, ज़ाहरी खदोखाल। जिस मौजू का इंतखाब आज किया है वो है ज़ाहरी खदोखाल। इमाम अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मौजूआत बनते हैं और अहले सुन्नत कुतुब में बहुत सारी तोहमतें भी उनके ऊपर लगाई गईं, और उन्हीं से शिया कुतुब में भी बाज़ रवायत मुंतकिल हुई। उन सब के भी छानबीन करना ज़रूरी है, उसके बारे में भी तहकीक और जांच पड़ताल करना ज़रूरी है। मसलन एक हवाला इशारा की हद तक, ताकि इस मौजू से हम रूगरदान ना हों और इस मौजू को आपकी खिदमत में बयान किया जाए कि क्या शक्ल सूरत थी इमाम अली अलैहिस्सलाम की। लेकिन ये बात बयान करने के लिए कि अहले सुन्नत कुतुब में उनकी मुखालिफत और उनकी दुश्मनी पर मुश्तमिल बहुत सी रवायात आई हैं, और उनके ऊपर अहले सुन्नत एतिकाद भी एक ख़ास खलका एतिकाद भी रखता है। जिस तरह मिसवर बिन मखरमा के उमवी लश्करों और उमवी जमात से ताल्लुक़ था मिसवर का। अब यह हदीस एक मारूफ हदीस है, फ़ातिमा तो बदअतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, जिसने इसे अज़ियदी उदीनी मा आज़ाहा, कि जिसने इन्हें अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। यह हदीस यह सुनी दोनों कुतुब में आई है, मुख्तलिफ पस मंज़र के साथ आई है। इसमें अब जब अहले सुन्नत कुतुब में ये आई और मिसवर बिन मखरमा ने बयान की या अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने बयान की, और दोनों मुखालिफीन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हैं, अहले सुन्नत रिजाल में भी है। मिसवर बिन मखरमा के बारे में ज़हबी ने लिखा है कि जब भी वो मुआविया बिन अबी सुफियान का तस्करा करते सल्ला अलैहि तो उन पर दुरूद भेजा करते थे। इस कदर शिद्दत से मोहब्बत और इस कदर क़ुर्बत थी मुआविया बिन अबी सुफियान से मिसवर बिन मखरमा की। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को मैदान जंग में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लाने वाली शख्सियत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थी। इन्होंने इस हदीस को बयान किया और इब्तदा में बयान किया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम अबू जहल की बेटी से शादी करना चाहते थे, और इसलिए शादी का पैगाम भिजवाया, और ये ख़बर जब रसूलुल्लाह को पहुंची तो गज़ब की हालत में रसूलुल्लाह निकले और उन्होंने कहा कि अगर अली इब्ने अबी तालिब एक मुशरिक और काफिर की बेटी से निकाह करना चाहता है तो मेरी बेटी को तलाक दे दे। और फिर ये इरशाद फरमाया फ़ातिमा तो बदअतु मिन्नी फमन युज़ीनी मा आज़ाहा, या मुख्तलिफ ताबीरात आई हैं। अब ये वाज़ह है कि इसका बैकग्राउंड नीचे वाली हदीस दुरुस्त है, वो शिया सुन्नी दोनों कुतुब में मुख्तलिफ तुरुक से आई है, लेकिन ये जो बैकग्राउंड है ये उन्हें दुश्मनी और बुग़्ज़ और कीना जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ था उसके आसार हैं, वाज़ह तौर पर घड़े गए हैं। क्योंकि अगर यही मसला होता तो जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कई ज़ौजात उनकी थीं और मुख्तलिफ इज़दवाज फरमाए, उनमें से एक बेटी होती है अबू जहल की भी, जबकि अबू जहल की बेटी से कभी उन्होंने निकाह नहीं किया। और ना कभी उसकी तरफ माइल हुए हैं और ना कोई ऐसा वाकया मिलता है, या क्या पता कि जान पहचान भी कोई ऐसी थी या नहीं। लिहाजा ये वाज तौर पर एक घड़ा हुआ है। और उस किसने ये सारे वाक़ियात बयान किए? मिसवर बिन मखरमा से ये रवायत या अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से है? और दीगर रावियों से है तो ये वाला वाक़िया ही नहीं है उसमें। उसका पस मंज़र इसी फ़ातिमा तो बदअत मिन्नी, यही हदीस है, लेकिन उसका पस मंज़र किया है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के पास बैठे थे और कई असहाब थे, तो आ हज़रत ने सवाल किया है कि ख़ातून के लिए सबसे बेहतरीन क्या है। अब सब खामोश हो गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और घर पहुँच के जनाब सैयदा से पूछा, तो जनाब सैयदा ने फरमाया, जैसे कि शिया कुतुब में भी रवायत आई है, कि खातून के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि ना वो किसी ना महरम को देखे और ना कोई ना महरम उसे देखे, ये सबसे बेहतरीन है उसके लिए। ये सुना वो वापस तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि या रसूलुल्लाह, खातून के लिए सबसे बेहतर ये है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ए अली, आपको किसने ये बताया? तो कहा कि मैंने फ़ातिमा से ये पूछा, उन्होंने इसको बताया है। जैसे ही रसूलुल्लाह ने ये सुना तो फरमाया, फ़ातिमा तो बदअत मिन्नी, और फिर कि जिसने इन्हें गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। अब आप ये देख रहे हैं कि यही रवायत है, लेकिन बैकग्राउंड तब्दील हो गया रावियों के तब्दील होने से। अहले सुन्नत में तीन चार मुख्तलिफ रावियों से ये रवायत आई है। एक तरफ अबू जहल की बेटी का मसला उठा के शख्सियत को ख़राब किया जाता है, और दूसरी तरफ वाक़या देखें जिसमें फजीलत जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम आशकार तौर पर हमारे सामने आती है। ये क्यों इस तरह के वाक़ियात मिलते हैं? क्योंकि हदीसें जब लिखी गईं वो एक सदी के बाद लिखी गई हैं, एक सदी तक ममानियत रही है। सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनके असहाब हदीसों को लिखा करते थे, वइल्ला इन्हीं अहादीस के ऊपर पाबंदी लगाई गई है और इसको मना करार दिया गया है। अच्छा, इस जगह पर आप मुलाहिज़ा कीजिए कि सिर्फ ये रवायात नहीं, अब ये क्योंकि बुखारी मुस्लिम में आई है, अहले सुन्नत का बड़ा गहरा अकीदा है कि ऐसा ही था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इज़दवाज के लिए खास्तगारी के लिए पैगाम भिजवाया, जबकि हकीकत इससे जुदा है। इमाम अलैहिस्सलाम कभी भी इस तरीके से माइल नज़र नहीं आए, ना उनकी सीरत जो दुश्मनों में आम थी उसमें ऐसा अनसर मिलता है, क्योंकि दुश्मन तो प्रोपागेंडे का मुंतज़िर होता है कि एक छोटा सा अनसर मिले और वो प्रोपागेंडा कर दे। और इस तरह के बहुत सारे मवारिद हैं, जैसे अबू तुराब कुनियत। अबू तुराब कुनियत एक हमारे यहाँ रवायात आई हैं, एक अहले सुन्नत कुतुब में। अहले सुन्नत कुतुब में है कि नऊज़ु बिल्लाह लड़ झगड़ के घर से, जनाब सैयदा से लड़ झगड़ के गुस्से के आलम में चले गए और एक बियाबान में या मस्जिद में जाके मट्टी में उसी गज़ब की हालत में सो गए। तो रसूलुल्लाह जब जनाब सैयदा के घर आए तो देखा अली इब्न अबी तालिब नहीं है। फरमाया, कहाँ गए हैं? तो कहा, वो तो लड़ झगड़ के चले गए हैं। तो रसूलुल्लाह मनाने के लिए गए तो देखा मट्टी में उल्ट पुलट हुए हुए थे, सोने की वजह से नहीं पता लगा, और कहा कि कुम याबा तुराब, मसलन कि ए अबू तुराब उठो। उठाया तो ये कुनियत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आई। अब यह अहले सुन्नत बैकग्राउंड में आया है, यकीनन इसके रावी कौन हैं? वही उमवी हथकंडे, क्योंकि जो बुनियाद रखी गई हदीसों को जम करने में और हदीसों को लेने में, वो इस बात पे बुनियाद रखी गई कि हर वो शख्स जो अहले बैत की तरफ माइल है उससे हदीस लेना ममनू है। वो चाहे सुन्नी हो या शिया हो, चाहे सहाबी हो या ताबी हो, चाहे फकीह हो या मुहद्दिस हो, अगर अहले बैत के हक़ में वो माइल है अहले बैत की तरफ, उससे हदीस नहीं लेनी। उसको शिया करार दे के मुहतात करार दे दिया गया, एहतियात करो, पहले परखो कि इसकी बात क्या है। अगर अहले बैत के हक़ में है तो फिर हदीस नहीं लेनी। जबकि नासमियों के बारे में भी हुक्म लगाया इल्मे रिजाल अहले सुन्नत ने, लेकिन नासमियों से उन्होंने आके रवायात ली, बुखारी में भी उन्होंने रखी, मुस्लिम में भी रखी, दीगर कुतुब में भी नासमियों और खवारी से और सरदारान खवारी से हदीसें ली, तो उसका नतीजा फिर यही सूरत बनती है। और फिर यहाँ से ही हमारी बास किताबों में भी मुंतकिल हुई, तारीख़ की किताबें हैं, हदीस की किताबें, खसूसन अमालिया शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह, उसमें मुख्तलिफ ऐसे वाक़ियात मिल जाते हैं कि जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम और जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम का निज़ा हुआ, झगड़ा हुआ। जबकि पीछे से सनद एक तो ज़ईफ़ है उन तमाम रवायतों की, दूसरा मुखालिफीन के साथ मुआफ़िक हैं वो रवायात, और ये ज़ाबते हमारे यहाँ मौजूद हैं कि अगर मुखालिफीन के साथ मुआफ़िकत रखते हैं तो वह हदीस कबूल नहीं होगी। आए अब हम हुलिया मुबारक, इमाम अली अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक क्या था? امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خد و خال کیسے تھے، ان کی ظاہری بدنی شخصیت کیسی تھی، اور اس کو جتنا بگاڑ کے پیش کیا گیا ہے اتنا کسی اور چیز کو بگاڑ کے پیش نہیں کیا گیا. اور بعض نے اپنے طور پہ خیالی تصویر اہل سنت نے بنائی ہے. آپ اگر انٹرنیٹ پہ کوئی عربی زبان میں لکھیں تو آ جائیں گی کوئی ایسی عجیب و غریب شکلیں، اور وہ شکلیں در حقیقت ان کے ہاں کتابوں میں وارد ہوا ہے. ان کے ہاں کتابوں میں کیسے شخصیت وارد ہوئی ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ ایک چھوٹا قد، دہ داہ کہتے ہیں، دہ داہ، دال ہے، دال الف ہے، کہ جسے ہم اپنی عامی زبان میں، اردو کی عمومی زبان میں جو معاشرے میں لوگ محلے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں گٹھا، گٹھا جسے کہتے ہیں، یعنی خوب چھوٹا قد اور پیٹ خوب بڑا ہوا، سر سے گنجے، داڑھی اتنی لمبی کہ سینہ ہی چھپ جائے، اور شدید کالا رنگ، شدید کالا رنگ، یہ انہوں نے امام علی علیہ السلام بنا کے پیش کیا. اور ایسے افراد انہیں وہ ملتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ مشابہت ہیں امام علی علیہ السلام کے. اب یہی یہ جو حلیہ مبارک ہے، اہل سنت سے کہیں کہ یہ کیسا حلیہ مبارک ہے، کہیں گے یہ تو تابعین نے بیان کیا ہے، تابعین میں صحابہ میں سے بعض نے بیان کیا ہے. اور اسی طریقے کی باتیں آپ شیعہ کتب اٹھائیں، اس میں بھی اس طرح کی باتیں مل جائیں گی، اس کے برخلاف باتیں نہیں ملیں گی آپ کو. لیکن وہ جہاں جہاں پر بھی شیعہ کتاب میں آیا ہے، آپ دیکھیں لی کہاں سے جا رہی ہے، وہ اہل سنت کتب سے ہی لی جا رہی ہے، اہل سنت راوی سے ہی لی جا رہی ہے. اور بہتر تو یہ ہوتا کہ اس طرح کا حلیہ مبارک لکھا ہی نہ جاتا کسی شیعہ کتاب میں. بہرحال انہوں نے، کیونکہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام، مکتب اہل بیت علیہ السلام کو یہ فرصت ان ظلم و ستم کے ایام میں فراہم نہیں ہوئی کہ وہ تاریخ اور سیرت کے اوپر کتابیں لکھتے، کیونکہ اس کے لیے خاص فرصت چاہیے، اس کے لیے مواقع چاہیے، کوئی آسودگی، آسودیت ذہنی چاہیے. اس لیے سیرت کی اور تاریخ کی جتنی کتابیں ہم تک وارد ہوئی ہیں سب کی سب اہل سنت نے لکھی ہیں، سب کی سب. ایک پرانی کتاب جو تیسری صدی ہجری سے تعلق رکھتی ہے، ابن مزاحم کی ہے، وقعت الصفین، اس میں سب سے پہلے حلیہ مبارک وارد ہوا ہے، اور اس میں یہی حلیہ مبارک وارد ہوا ہے. البتہ کہا کہ چہرہ بڑا خوبصورت تھا، لیکن بقیہ اسی طریقے سے کہ پیٹ خوب بڑا ہوا تھا اور چھوٹا بالکل قد تھا، داڑھی اتنی لمبی تھی کہ سینے کے اوپر آ جائے، اور ان کا رنگ انتہائی شدید کالا تھا. اور بعض جگہوں پہ آیا، اور اسی طرح بعض شیعہ کتب میں بھی یہ روایت آئی کہ جناب سیدہ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ ڈر کے مارے چیخ ماری کہ کس سے میری یا رسول اللہ شادی کر دی. یقیناً یہ ساری کی ساری باتیں، یہ اہانت امیر المومنین علیہ السلام میں ہے. قطن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے نہیں تھے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک کے حوالے سے آئیں، اب ہم کتب سے کچھ پڑھتے ہیں. ہمارے پاس دو طرح سے اس حوالے سے روایتیں آتی ہیں. ایک روایتیں وہ ہیں کہ جہاں پہ رسول اللہ سے تشبیہ دی گئی ہے یا حدیث کی کتب میں وارد ہوا ہے، یا کہا گیا ہے کہ مثل حسن یوسف تھے، کہ جس طرح یوسف علیہ السلام خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، اس طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی حسین و جمیل تھے. یہ والی روایتوں کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. بعض روایتوں میں نام لے کے آیا ہے. البتہ روایتیں دو طرح سے ہو جاتی ہیں. ایک روایات ہیں کہ جو مخالفین یا راویوں کا نہیں پتہ، مجھول الراوی ہیں، ان سے آئی ہیں ہمارے پاس. اور ایک وہ روایات ہے جو ابن حنفیہ اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری، ان کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے. ہم پہلے جناب جابر بن عبداللہ انصاری اور ابن حنفیہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر اس کا انشاءاللہ جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ روایت مناقب آل ابی طالب میں بھی آئی ہے، بحر الانوار میں بھی ذکر ہوئی ہے، اور اسی طرح مقاتل الطالبین میں بھی ذکر ہوئی ہے. ابن حنفیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے حلیہ مبارک، ابن حنفیہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، محمد ان کا نام تھا، اور جنگ صفین کے کمانڈر اور جرنیل جن کے ماتحت پوری فوج قرار دی گئی تھی وہ ابن حنفیہ ہی ہیں. وہ فرماتے ہیں کانا علی رجلا دہ داہ. اب اس کی جو سند ہے، آپ یہ دیکھیں سند ہمارے پاس ضعیف سند سے ہی آیا ہے، تام نہیں ہے. پھر موافقت میں دیکھیں، مخالفین کی موافقت میں یہ روایت جاتی ہے، لیکن صرف اس لیے پڑھی جا رہی ہے کیونکہ شیعہ کتب میں سے یہ ہے. ربع القامہ، دہ داہ کہتے ہیں چھوٹا قد، گٹھا قد. जो इस रवायत पे इतराज़ात हैं वो हैं ये कि दाहदाहन फिर कहा जा रहा है रुबुल कामा, रुबुल कामा कहते हैं मुतवस्सित कद, उनसे कि दोनों में से कौन सा कद है, दाहदाह है यानी गिट्ठा कद है या रुबुल कामा है, दोनों ये तो दोनों मुतजाद सिफात हैं। तो पहले कह रहे कान अली रजुलन दाहदाहन रुबुल कामा, अब रुबुल कामा के लुगत में आप लुगत की किताबों में रुबुल कामा लिखें, ये अलमौरिद है या इस तरह से दीगर कुतुब हमारे पास माजिम हैं उसमें रुबुल कामा का लिखा जाता है मुतवस्सितुल कामा, यानी कद मुतवस्सित था, ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा। लेकिन इस जगह पे चूँकि मुतजाद सिफात आ रही है इसी से पता लग जाता है कि ये रिवायत जिसने बयान की है उसने झूठी नस्बत इब्ने हनफिया की तरफ दी है, यह सच्ची नस्बत नहीं है। अज़ज्जुल हाजैन अदअजुल ऐनैन, आँखें उनकी लंबी थी और कअन्ना वजहू अलकमर लैलतुल बद्र हसना, खूबसूरती में चौदहवीं के चांद की तरह उनका चेहरा चमकता था। वह हुआ इला समरा, समरा कहते हैं कि सांवला रंग, एक सांवला रंग होता है जो स्याही की तरफ माइल होता है, एक सांवला रंग स्याही की तरफ माइल नहीं होता। ये आज भी पूरी दुनिया में जो खूबसूरत तरीन रंग शुमार किया जाता है वह समरा ही है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद भी खूबसूरत रंग नहीं शुमार किया जाता और बहुत ज़्यादा जो स्याही की तरफ माइल हो वो भी। अलबत्त ये मेयार ज़ाहरी मेयारात हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ और मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ मेयारात होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इला सुमरा असला, असला कहते हैं गंजे को, यानी पूरा सर में कोई बाल नहीं था, हल्के हल्के पीछे की जानब कुछ बाल थे। लहू उनुकुहु इब्रीकु फिद्दा, लंबी उनकी गर्दन थी, वह अरकब और मोटाई में थी, लंबी लेकिन मोटी गर्दन थी। ज़ख्मुल बत्न, पेट बहुत बड़ा था। अकरा ज़हरे, उनकी जो कमर और कंधे थे वो भरे हुए थे। अरीदु सद्र, सीना काफ़ी लंबा था। शनुल कफ़ैन, यानी उनके जोड़ नज़र ही नहीं आते थे, इस तरह से बाजू उनके हाथों के साथ जुड़े हुए थे। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो उनके आ रहे हैं लहू लहया कद जानत सदरहू, के वज़न वो लहया उनकी दाढ़ी सीने तक छुपी हुई थी। गलीज़ुल उज़लात, उनके जो उज़ले थे यानी उनके पट्टे वो इंतहाई कवी और मोटे थे। हमशु साकाइन, हमशुन या हमशु साकाइन दोनों तरह पढ़ा गया, हमशु भी पढ़ा गया और हमशु भी। साकाइन, साकाइन कहते हैं पिंडली को, ये ऊपर घुटने से लेके नीचे पिंडली के दरमियान जो टांग होती है, मसलन पाँव से लेके घुटने तक का हिस्सा दरमियाना, इसको कहते हैं साकाइन। हमशु साकाइन, पतली पतली उनकी टांगे थी, यानी अजीब सा एक चेहरा बन जाता, टांगे पतली हों, बाजू मोटे हों, पेट निकला हुआ हो, तो ऐसा इंसान कहाँ पे दिखाई देगा। ये जब आता है हुलिया मुबारक, तो ये हुलिया मुबारक वाज़े तौर पे पता लगता है कि उमवी हथकंडों की इजाद करदा है। ये तो एक शिया कुतुब से था, बाकी सारा अहले सुन्नत कुतुब से आया है, और वो अहले सुन्नत की तारीख़ और मनाकिब की जो किताबें हैं उसी से ये रवायत ली गई है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि ये रवायत अहले बैत अलैहिस्सलाम से, यानी आइमा अलैहिस्सलाम ने हुलिया मुबारक जिक्र नहीं किया बालफाज दीगर, अगर आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से हुलिया मुबारक होता उसकी ऊपर भी बहस की जा सकती थी, अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से इस तरह तस्करा नहीं है। एक और किताब है मकातुल तालिबीन में, तालिबीन अबुल फरज बयान करते हैं कि कान अलैहिस्सलाम असमर मरबूअन, असमर यानी सांवला रंग था, गंदुमी रंग था, सांवला रंग था, और मरबूअन यानी उनका कद मियाना कद था। वह हुआ इलल कसर अकरब, लेकिन छोटेपन की तरफ वो बड़ा हुआ था। अजीम अल बतन, पेट बहुत बड़ा था। दकीक अल असाबे, उंगलियाँ पतली पतली उंगलियाँ थी, बहुत अजीब सा एक नक्शा बनता है, टांगें भी पतली और उंगलियां भी पतली, लेकिन पेट बड़ा हुआ और बाजू इस कदर भरे हुए कि वो जोड़ नज़र ही ना आए, जोड़ नज़र ना आए तो खूबसूरत बाजू नहीं लगते, जोड़ जहाँ पे बहुत फासला हो वो भी नहीं खूबसूरत लगते, मियाना हो तो वो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं, गर्दन लंबी लेकिन बहुत मोटी। अब ये जो आ रहे हैं आप देखेंगे कि हुलिया मुबारक में मुतजाद बातें आ रही हैं, मैं इसलिए ये बातें आपको सुना रहा हूँ किताबों से डायरेक्ट पढ़ के, ताकि ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि उनकी शख्सियत को ख़राब करने के लिए कितना प्रोपोगंडा किया गया। आप ख़ुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ज़माने 70 साल तकरीबन 70 साठ 70 साल एक शख्सियत को गालम गलोच किया जाता रहा हो, नफ़रत उससे की जाती रही हो, और उस 70 साल उस इस्लामी माशरे के गुज़रने के बाद अब जब हदीसें लिखी जाएंगी तो क्या उन हदीसों में खूबसूरत चेहरा लिखा जाएगा, क्या मियाना कद लिखा जाएगा, या वो कोई ऐसी सूरत बयान करेंगे कि जिससे नफ़रत का इजहार ही हो। और लिखने वाले भी वही हथकंडे हैं कि जिन्होंने गालम गलोच पीछे किया या उनसे मरबूत अफराद हैं। इसलिए अगर 60-70 साल एक शख्सियत को खूब गालम गलोच किया गया हो और उसके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे किए गए हों, उसकी शख्सियत को बिगाड़ के पेश किया गया हो, और उस 70 साल के बाद अब हदीसें लिखने का जब वक्त आएगा तो वो जो लिखने वाले मुखालिफीन हैं यानी उमवी जितने अफराद हैं, जैसे मसवर बिन मखरमा है, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं, या इसी तरीके से दीगर अफराद हैं कि जो उमवी हथकंडों के साथ कामिल तौर पर शरीक थे और उन्हीं के हमसफ़र थे, उन लोगों ने जब ये हदीसें लिखीं तो वो कोई अच्छा हुलिया मुबारक इमाम अली अलैहिस्सलाम का पेश नहीं फरमाएंगे और तरह तरह की बातें पेश करेंगे। इसकी सबसे आसान मिसाल, कोई मुमकिन है कि ये चीज़ हल ना हो? आज के दौर में आप सिर्फ रहबर मुअज़्ज़म की तस्वीर मुखालिफीन के फेसबुक या पेजेस में जाके, वेबसाइट्स में जाके देख लें, उन्होंने कैसी बनाई होगी। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की, क्योंकि आपने तो उन्हें देखा है डायरेक्ट, वाज़ टीवी पे भी कद कामत दिखाई देती है, उनका खूबसूरती जाहो जलाल पुर नूर, उनका चेहरा वक़ार और वजी होना आया है सबके लिए। लेकिन आप इन्हीं के चेहरे को जब मुखालिफीन में जा के देखें तो वो देखिए किस तरह की पेश करते हैं, हती कि उन्हीं की वीडियोज़ को किस तरह से पेश करते हैं कि बाज़ हैं वो गा रहे हैं अजीब व गरीब चीज़ें और रहबर उधर बैठे हुए हैं और उसको अजीब व गरीब करके उन्होंने दिखाया है। लिहाजा ये चीज़ कोई ऐसी बात नहीं है कि काबिल कबूल ना हो। इसलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम का चेहरा इंतहाई बिगाड़ के पेश किया गया। आए अब हम सिर्फ हम तहकीकी तौर पर देखें, सिर्फ इतने बयान पर ना रहें, क्योंकि किताबों से आप बात लेके आएँ तो किताबों में आपने पहला अभी हुलिया मुबारक देखा, उसमें और सिफात भी थी, उन्हें तर्क किया गया है ताकि आगे चल सके। दूसरा जो हमारे पास है उसमें आप देख रहे हैं कि मरबूअन कहा, लेकिन छोटा नहीं, गिट्ठा नहीं कहा, दह दह नहीं कहा, बल्कि मियाना कद का, लेकिन जो छोटेपन की तरफ माइल है, और अजीमल बतन आप देख रहे हैं बड़े पेट वाला कहा, उंगलियां छोटी हैं, गलीज दाराइन हैं, उनके जो कंधे हैं वो बहुत भरे हुए हैं, हमश साकाइन हैं, जो उनकी टांगें हैं वो बहुत पतली हैं, दकीक दकीक कहते हैं पतलेपन को, जो टांगे पतली हों वो बहारी और भरी हुई टांगे जिसामत के साथ, अगर टांगों का ताल्लुक इंसानी जिसामत के साथ होता है, बाज़ुकात इंसानी जिस्म बड़ा होता है और टांगे पतली हों तो बहुत अजीब सा लगता है, ये तो आपने कार्टूनों में भी देखा होगा, वो ऐसे बनाते हैं पतली पतली टांगे हैं और जिस्म बहुत बड़ा है, वो अजीब सा दिखाई देता है। लेकिन अगर बड़ा बदन बड़ा है और टांगे उसके मतवाजन हैं तो वो एक अच्छा मंजर दिखाई देता है। लिहाजा इधर इन्होंने इस हवाले से हमश साकिन कहा। फ़ी आइनैन लयन अज़ीमुल्लहिया, दाढ़ी बहुत लंबी थी, असला उनकी यानी गंजे थे, नातिल जिबहा के, इसको आगे हम देखते हैं, यानी उनकी जो पेशानी थी वो भी बहुत चौड़ी पेशानी वाले थे। इसके बाद आगे तीसरी हमारे पास किताब आ जाती है मौजमुल कबीर तबरानी और मौजमुल ज़वायद हिसमी में, उसमें लिखा गया काना ज़ख्मुर रास, सर बहुत बड़ा था, ज़ख्मुर रास सर भी बहुत बड़ा था। फिर अबू इसहाक ने जो ज़िक्र किया है ये भी मौजमुल कबीर में और मौजमुल ज़वायद में, अहले सुन्नत की दो बड़ी हदीस की किताबें हैं, उसमें ज़िक्र किया गया है कि जब लम्मा तज़व्वजा फ़ातिमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम का इज़दवाज जनाब सैयदा से किया तो क़ादत ले नबी, तो उन्होंने नबी से शिकायत की, ज़व्वजतनी ही आमीश अज़ीम अल्बतन, कि या रसूलुल्लाह आपने किस से मेरी शादी कर दी, कि ये मोटा पेट वाला और ये किस तरह का इंसान है कि जिससे आपने मेरी शादी कर दी। या अगली रवायत में है कि आपने मुझसे मेरी शादी किस बंदे से की है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने आपकी शादी उस बंदे से की है जो पहले सहाबी हैं इस्लाम लाने के अतबार से, और इल्म में सबसे आगे हैं और हिल में सबसे अजीम हैं। अब आपने मुलाहिज़ा किया कि ये वाली बातें ये मुखालिफीन की तरफ से हैं, क्योंकि जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम की शादी के वाक़यात आप पढ़ें, अहले सुन्नत कुतुब से ही पढ़ें, तो पूरा का पूरा माशरे में जितने बड़े और बुज़ुर्ग अफराद, अमीर कबीर शरफ़ वाले, बड़े बड़े औसाफ़ और कमालात के हामिल समझे जाने वाले, सब ने जनाब सैयदा से निकाह के लिए दरख्वास्त भिजवाई और रसूलुल्लाह सब की तरफ से इनकार करते थे। हत्ता कि खलीफ़ अव्वल हज़रत अबू बकर और खलीफ़ सानी हज़रत उमर ने कई दफ़ा पैगाम भिजवाया कि हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने उन इनकार किया। सिर्फ़ इमाम अली अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं कि जिनसे निकाह जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम के करने पे इमाम रसूलुल्लाह राज़ी हुए। अब ये फजीलत पूरे माशरे में बहुत नुमाया फजीलत थी, उस फजीलत को कम करने के लिए आप देखें किस तरह से रवायतें लाई गईं। रसूलुल्लाह ने तो, क्योंकि रसूलुल्लाह के पास पैगाम आता था, वो इनकार कर देते थे दीगर अफराद को, ये वाली सीरत रसूल बहुत आशकार थी, इसलिए रसूलुल्लाह की जानिब से हदीसें नहीं घड़ी जा सकती थी, इसलिए उन्होंने जब हदीस घड़ी तो जनाब सैयदा की जानिब से घड़ी। आखिर जनाब सैयदा ने कहा तो किसने ये पैगाम हम तक पहुँचाया? एक बंद कमरे में रसूलुल्लाह और जनाब सैयदा के दरमियान बातें हो रही हैं, तो किसने हमको ये बात आके बताई और रावी ने कहाँ से सुन ली? इसलिए यहाँ से ये पता लगता है ये मुखालिफीन की घड़ी हुई बातें हैं। वाकदी ने ज़िक्र किया है, वाकदी तारीख़ में अहले सुन्नत कबूल करते हैं लेकिन हदीस में कबूल नहीं करते, और ये भी मौजमा तबरानी में है, मजमा ज़वायद हीसमी में है। कान अली बिन अबी तालिब आदम रबा या रबा, आदम कहते हैं इंतहाई सयाह, उदमा, उदमा से हैं, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नहीं है, बाज़ आदम अलैहिस्सलाम को भी इसी से कहते हैं। उदमा यानी इंतहाई सयाह रंग था लेकिन मियाना कद था। ज़ख्मल मनकबई ने, और उनके जो कंधे थे वो भरे हुए थे, तवील अल्लहया, दाढ़ी बहुत बड़ी थी, असला सर से गंजे थे, अजीम अलबतन ने पेट बहुत बड़ा था, गलीज़ अलाइनई ने बहुत मोटी मोटी आँखें थे, अब यदुर्रा से लेकिन सर सफ़ेद था यानी चटियल मैदान की तरह, कुछ सर पे बाल ही नहीं थे, वल्लहया इसी तरीके से उनके बालों में भी सफ़ेद थे, यानी सर एक तो सफ़ेद था और दाढ़ी भी सफ़ेद थी। फिर एक और किताब में आया है सिफ़ीन में, ये वक़ात सिफ़ीन इबन मज़ाहिम मिनकरी की है, यह इख्तिसास शेख मुफीद में भी आई है, बिहारुल अनवार में भी है, यही वाली रवायत, लहु सनाम उनका सनाम सौर, आपने बैल देखे ना उसके बड़े होते हैं, वो कहते हैं कि कमर इस तरह से भरी हुई थी कि गोया पीछे से लगता है कि ऊपर जैसे कुबड़ा सा नहीं इंसान होता, इस तरह एक कुबड़ापन निकला हुआ है। किताबों में बहुत अजीब व गरीब हुलिया है, इंसान अगर उसको पढ़े हैरान रह जाता है कि ये वाले कलिमात वारिद नहीं होने चाहिए थे। अबू तुफैल ने इब्ने मसूद से ज़िक्र किया है, उसमें भी इसी तरीके से बातें हैं। ये बहरहाल आपके सामने चंद मैंने हुलिया मुबारक रखा, और जिससे अब हम तहकीक की तरफ आते हैं। बस आपके सामने जो बातें आईं वो क्या है कि रंग में इंतहाई सयाह, लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ रवायतें आ रही हैं समरा यानी सांवला रंग, दूसरी तरफ आ रहा है कि सर से गंजे थे, बहुत पेट भरा हुआ था और कमर इस कदर भरी हुई थी कि जिस तरह बैल के ऊपर एक कोहान सा निकला होता है छोटा सा, इस तरह से वो जिस तरह एक कुबड़ा सा इंसान होता है उसके पीछे गोश्त का लोथड़ा जमा हो जाता है और एक गोल दायरा सा बन जाता है, इस तरह से बना हुआ था। ये शख्सियत इंसान को यकीन हो जाता है कि बनू उमैया जो लान तान करने वाले हैं वो ये वाला हुलिया बयान कर सकते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुहब्बीन या जिन्होंने उनको पाया, वो उनकी सीरत उनके आदाब, क्योंकि हमारी ख्वाहिश ये थी कि आदाब व सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को शुरू किया जाए, मसलन कैसे खाते पीते थे, कैसे चलते थे, कैसे गुफ्तगू किया करते थे, अच्छा दांत उनके किस तरह से थे, कितना मिसवाक किया करते थे, नमाजों के तरफ रुझान कैसा था, रात को क्या हालत होती थी, ये चीज़ें बयान की जाती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इंसान पढ़ता है किताबों में और ये हुलिया मुबारक की तरफ निगाह पड़े तो वहाँ पे इमाम अली अलैहिस्सलाम का दिफा करना वाकई वाजिब हो जाता है कि दिफा किया जाए इमाम अली अलैहिस्सलाम का, ये बनू उमैया की तरफ से जो चीज़ें आई हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम हकीकत यह है कि ये वाले औसाफ़ खलीफे अव्वल, खलीफे दुवुम और बाद सहाबा के हैं, और उनके पर्दापोशी करने के लिए ये बातें की गई हैं। जैसा कि बास किताबों में, तबरी में भी ये रवायत आई है, तारीख़ मदीना ते दिमिश्क इब्ने असाकिर की उसमें भी है, तबकात कुबरा इब्ने साद में भी है कि अम्र आस ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को कहा था हिमशु साकई ने। अम्र बिन आस, अब आप शख्सियत जानते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बदतरीन साजिशें करने वाली शख्सियत अम्र इब्न आस है। अम्र आस तो हमत लगाया करता थे हमशु साकीन कि पतली पतली टांगें हैं, ये क्या जंग लड़ेंगे। और जब जंग में आया तो तारीख़ ने लिखा कि बरहना हो के भाग के अपनी जान बचाई। तो ये इस तरह की तोहमतें अम्र इब्न आस की तरफ से आईं। और इसी तौर पे बाज़ ऐसी रवायात आई हैं कि खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर के बारे में ये आया है हमशुल साकीन, कि उनकी टांगें पतली थीं। या इसी तरीके से आया हज़रत अबू बकर के बारे में कि उनकी पेशानी बहुत बड़ी पेशानी थी, क्योंकि एक अजीब सा तासुर बन जाता है कि दाढ़ी बहुत लंबी हो, चेहरा इंतहाई काला हो और पूरे चेहरे पे सबसे ज़्यादा जो हिस्सा नज़र आए वो पेशानी ही है, तो अजीब सा एक चेहरा बनता है। अच्छा, कसीरुल कामा वाली सिफात वाज़े तौर पर हमें पता लगता है कि वो बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मियाना कद हो लेकिन तोलानियत की तरफ ना हो, मियाना कद हो लेकिन कसर की तरफ, छोटेपन की तरफ माइल हो, ये हो सकता है, क्योंकि छोटा और गिट्ठा वो वाज़े तौर पे पहचाना जाता है। अगरचे छोटा होना, लंबा होना ये कोई बुरी सिफात नहीं है, ये सिफात बुरी सिफात नहीं है अगर हकीकत देखी जाए, क्योंकि इंसान के कमालात उसके मानवी हकीकी कमालात होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हुज्जत इलाही ज़रूरी है। अकायद का एक हमें मुकदमा इधर जोड़ना चाहिए कि अकायद में जैसा अल्लामा हिली रहमतुल्लाह ने कशफुल मुराद और दीगर कुतुब में भी ये हम मुतालिया करते हैं कि ज़रूरी है हुज्जत खुदा इस तरह की खिलकत रखता हो कि लोगों के लिए काबिल नफ़रत ना हो, यानी पहली आँख में लोग उससे खींचे चले जाएँ, जाजिब शख्सियत का मालिक हो। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ऐसी शख्सियत का मालिक हो कि शहवानी रगबतें उसकी तरफ बढ़े, नऊज़ु बिल्लाह, ये ज़रूरी नहीं है। एक पुरवकार शख्सियत हो, जाजिब शख्सियत हो जिससे लोग खींचे चले जाएं। जैसे इमाम तकी अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी में देखा, उनका गंदमी रंग स्याही की तरफ माइल था, जिसकी वजह से दुश्मन उन्हें अस्वद या स्याह होने का ताना भी देता था, लेकिन उनकी शख्सियत इस कदर जाजिब थी। ज़रूरी नहीं है कि स्याह रंग हो तो शख्सियत जाजिब नहीं होती, लोग खींचे चले जाते हैं। आज भी ऐसी बुलंद मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि स्याह रंग होने के बावजूद उनकी शख्सियत हमें जाजिब नज़र आती है, जैसे शेख ज़कज़की कि खुदावंद मुताल उन्हें हिफ्ज़ करे, या और बहुत सारी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं। लिहाजा जाजिब शख्सियत का हुज्जत इलाही के लिए होना ज़रूरी है कि जिससे कराहत का एहसास ना करें मखलूक़ खुदा, इंसानियत कराहत का एहसास ना करें। बाज़ ऐसा हुलिया बना के पेश किया जाता है कि उससे कराहत का एहसास आता है, कबाहत उसके अंदर वजूद रखती है, इस तरह का एहसास पैदा होता है। काला रंग कबाहत नहीं है, यह तो अल्लाह ताला की अता है, और बाज़ जगहों पे हुस्न या अलामत शुमार होता है। सांवला रंग पूरी दुनिया में हुस्न की अलामत शुमार होता है। गोरा रंग जैसे हमारे माशरे हैं उनमें बहुत खूबसूरती की अलामत शुमार होता है। तो ये माशरों के अतबार से रंगत के मेयार जुदा हैं। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की तरफ एक रिवायत मंसूब है, ये भी अहले सुन्नत कुतुब में आई है और हमारी किसी बुनियादी अकायद की अहदीस की किताब में नहीं आई, लेकिन इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है कि उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की जब सिफत बयान की तो बयान किया हुआ इला अक्सर इला अल-क़स्र अक्रम, के छोटेपन की तरफ माइल थे, लेकिन उसके बाद कहा एतदाल मियाना कद था, बेशक छोटेपन बाज़ होते हैं तोलानियत की तरफ माइल थे। बहुत लंबा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा जा सकता है हाँ एक मियाना रवि से कुछ बाहर की तरफ निकले हुए हैं तोलानियत की तरफ। अच्छा, ये जो हमारे पास रवायतें हैं कि उनका छोटा कद था, इस ये किस तरह से हमारे पास बात टूट जाती है। पहली दलील इस पर कि छोटा कद नहीं था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में जहाँ पे दह दह का लफ्ज़ आया है उसी जगह रुबउल कामा का भी लफ्ज़ आया है, और ये वाले मनाबे भी हमारे पास कसीर हैं जिनमें रुबउल कामा यानी मियाना कद था उनका इसका बयान आया। दूसरा हमारे पास तारीख़ मदीना दमिश्क में शाबी बहुत बड़े اہل سنت میں تابعی شمار ہوتے ہیں، اور مراسیل جس طرح شیعوں میں محمد ابن ابی عمیر کی مراسیل قابل قبول ہیں، اہل سنت میں بالخصوص حنفیوں کے نزدیک شعبی کی مراسیل قبول ہیں. شعبی کہتے ہیں رائی تو علی ابن ابی طالب، میں نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا یخطبو علی المنبر، منبر کی پر خطاب فرما رہے تھے، شیخن بڑھاپے میں تھے، مربوعا میانہ قد تھا ان کا، چھوٹا قد نہیں تھا میانہ قد تھا. یا رازم بن سعید کہتے ہیں اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے، کانا رجلن فوق الربع، ان کا میانہ قد سے تھوڑا اوپر تھا قد، نہ کہ چھوٹے پن کی طرف مائل تھے. اسی طرح سے شبلنجی شافی نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب نور الابصار میں، اقرب الی الطول، طول کی طرف مائل تھے امام علی علیہ السلام کا قد. یہ ہمارے پاس روایتیں آ جاتی ہیں، بس جب اوصاف متناقض جمع ہو جائیں، ایک کے چھوٹا قد، ایک کے میانہ قد، ایک روایت آ کے کہ چھوٹے پن کی طرف مائل تھا میانہ قد، ایک کے میانہ قد طولانیت کی طرف مائل تھا، تو یہاں پہ انصاف یہی ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیں کہ اس وقت بیان کرنے والے افراد کون ہیں، ان کن ماحول میں یہ کتابیں لکھی گئیں، اور حقیقت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے. ہمارے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آئی ہیں، اس میں یہ آیا کہ ان کا میانہ قد تھا جو طولانیت کی طرف مائل تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت کئی حدیثوں میں موجود ہے، اس لیے یہ والی روایات ہمارے لیے قابل اعتماد بن جائیں گی. اور آخری چیز کہ چھوٹا قد عیب نہیں شمار ہوتا. بعض کتب میں وارد ہوا ہے، بہار میں کمال الدین میں، یا حاکم نشاپوری نے اہل سنت میں سے مستدرک میں تفسیر عیاشی میں بھی آیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے مالک تھے، اس لیے چھوٹا قد معاشروں کے حساب سے الگ ہوتا. ممکن ہے داؤد علیہ السلام کا جو چھوٹا قد کہا جا رہا ہے وہ آج کے دور کے مطابق بہت بڑا قد شمار ہو، اس دور کے مطابق ممکن ہے چھوٹا قد شمار ہو، اس لیے یہ معیارات مختلف ہوتے ہیں. اچھا، ہم اس کے بعد آ کے جائزہ لیتے ہیں اس بات کا کہ آیا امام علی علیہ السلام گنجے تھے اور موٹے پیٹ والے تھے. خوراک تو شیعہ سنی دونوں نے لکھی، امام علی علیہ السلام کی خوراک کتنی تھی، جو کی روٹی کھاتے تھے اور اس کے ساتھ دودھ لے لیتے تھے یا کھجور کے ساتھ، یا اگر بعض اوقات ایسا بھی نہیں ہے، روایت میں امام آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آیا کہ بعض یہ نقشہ کھینچتے امام علی علیہ السلام نے کبھی گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اصلا گوشت کو دیکھا ہی نہیں. ادھر آئے کہ امام علی علیہ السلام پرندے کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی اگر ہفتے میں ممکن ہے کہ چند مرتبہ کھا لیں یا مہینے میں چند مرتبہ کھا لیں، ایسا نہیں تھا کہ گوشت کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے. پھر حدیث الطیر تو شیعہ سنی دونوں کتب میں آئی کہ بھنا ہوا پرندہ لایا گیا تو باہر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ علی کو بھیجیں، سب کی خواہش تھی کہ ہم ہی چکھ لیں، تو انہوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ اکیلے کھایا، تو صحابہ نے آ کے کہا آپ کی تو یہ سیرت نہیں تھی، آپ تو سب کو بلا کے ان کو کھلاتے تھے، تو وہاں پہ کہا کہ یہ جنت کا ایک وہ تھا تحفہ. یہ حدیث کہ میں بالمعنی حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پرندہ انہوں نے نوش فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا خیبر کے موقع پہ، غزوہ خیبر میں یہودیہ نے زہر دیا، وہ کس میں دیا؟ وہ کوئی بینگن ٹینڈوں میں تو نہیں دیا، وہ بکری کی آگے کی ران، جو بکری کے دستی جسے کہتے ہیں فارسی میں، اس میں زہر ملا کے دیا. اس کا مطلب ہے رسول اللہ وہ تناول فرماتے تھے تو اس میں آیا، لہذا یہ نقشہ کھینچنا بھی غلط ہے کہ وہ گوشت کو اصلا ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے. یا ایک خوش ذائقہ، انہوں نے کبھی غذائیں کھائی ہی نہیں، یہ بھی نہیں. ہاں، ان کی زندگی سادہ تھی، ان کی روزانہ روٹین نہیں تھی یہ، لیکن امام علی علیہ السلام کا بڑا پیٹ یہ پروپوگینڈا ہے. ہمارے پاس صحیح سند روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں یہ بات شیعہ سنی دونوں کتب میں آئی ہے کہ اے علی آپ کیا ہیں، انزع و بطین، انزع والبطین کہا. انزا کہتے ہیں گنجے کو، بطین کہتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ کو، یعنی موٹا بڑا نکلا ہوا پیٹ. تو یہ والی روایت کا پہلا حصہ وہ پروپاگنڈا کر کے عام کر دیا گیا، دوسرا حصہ بیان نہیں کیا. آئمہ علیہ السلام آئے تو انہوں نے دوسرا حصہ تکرار کے ساتھ آشکار کیا کہ لوگوں نے پہلا حصہ پھیلا دیا، انزا بطین کہ گنجے اور بڑے پیٹ والے ہیں، کیونکہ اب دیکھا تو کسی نے نہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں، اور جنہوں نے دیکھا ان تک سند تام نہیں ہے جو جنہوں نے حلیہ بیان کیا. یعنی شیعہ سنی کتب میں، دونوں کتب میں صحیح سند روایات سے امیر المومنین علیہ السلام کا حلیہ مبارک وارد نہیں ہوا. اصلاً شیعہ کتب میں تو وارد ہی نہیں ہوا امام علی علیہ السلام کا حلیہ مبارک، सही सनद रवायात से, मोतबर रवायात से, इसलिए हमें कवायद के ज़रिए से लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अंजा बतीन ये वाली रवायत शिया सुनी दोनों कुतुब में सही सनद और मोतबर ज़राए से आई है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अली, आप गंजे और बड़े पेट वाले हैं। तो उसके बाद फिर बयान फरमाया, अंजा से मुराद है अंजा मिन शिर्क, शिर्क से खाली हैं, व बतीन मिन इल्म, इल्म से भरे हुए हैं। तो आइमा अलैहिस्सलाम ने फिर आके बताया अंजा से मुराद शिर्क था, कि शिर्क से वो खाली और गंजे हैं, ना कि सर के बाल नहीं हैं उनके। वह बतीन यानी पेट, उनका बतीन है पेट निकला हुआ, यानी इल्म के अतबार से इस कदर भरे हुए हैं कि इल्म उनके वजूद से झलक रहा है। अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, या अना मदीनतुल हिकमा वालियुन बाबुहा, अना दारुल हिकमा वालियुन बाबुहा, के तिर्मिज़ी में रवायत वारिद हुई है। मदीनतुल इल्म वली अहले सुन्नत में सियासता में ये रवायत वारिद नहीं हुई, अलबत्ता दीगर कुतुब अहले सुन्नत में वारिद हुई हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि मदीना ऐसा शहर है, मदीना के बहुत बड़ा इल्म का शहर है, लेकिन दरवाज़ा उसमें एक ही है। अब जब हदीसें घड़ने के लिए आए तो कहा खिड़की भी तो होगी, अब बताएं शहर की खिड़की होती है वो सरबान, क्योंकि अब जब सारे वो सहाबा पूरे हो गए जिनको वो नुमाया करना चाहते हैं, तो फिर एक तो टकराव वाले सहाबा सहाबी रह गए, मुआविया इब्ने अबी सुफयान, तो कहा वो छत के ऊपर परनाला भी होता है, तो वो परनाला थे। तो उनसे कहें कि मदीना और शहर, किस शहर की छत होती है? कुछ छत वाला शहर आज तक देखा है? दीवारें मुमकिन है कहा जा सके, दरवाजे शहर के होते थे, लेकिन ये कौन सा शहर है जिसकी छत भी पड़ी हो, जिसकी खिड़कियां, वो घर है या शहर है? लिहाजा ये हमारे सामने वाज़े आता है कि मुकाबले में शख्सियत को ख़राब करने के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उन्होंने ये हदीसें घड़ी। और हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ रवायात में कि अबू सुफियान वो कसीर कामा थे, और अबू सुफियान का रंग काला और स्याह था, अम्र आस का कद जो है वो काला था। शदीदुल उदमा के अल्फाज जो हमारे यहाँ वारिद हुए हैं शिया सुन्नी कुतुब में वो सही नहीं है, क्योंकि असमर के अल्फाज ज़्यादा वारिद हुए हैं, जैसे शाबी ने अहले सुन्नत में नकल किया है, या इसी तरीके से आपने राजिम बिन सईद ने नकल किया है, या इब्ने हनफिया की तरफ जो रवायत थी उसमें नकल किया गया है, इब्ने अब्बास से जो रवायात है उसमें भी है। एक रवायत सुना के इस मौजू को हम अभी ख़त्म करते हैं, बल्कि बाज़ रवायात में तो ये भी आया है इन्नहु अहमर, सुर्खी की तरफ माइल थे, यानी सफ़ेद जिसे कहते हैं ना, ऐसा सांवला रंग कि जो हमारे यहाँ मतलब पंजाब में गोरा शुमार होता है, वो अंग्रेज़ों में गोरा नहीं होता, अंग्रेज़ों की गोरे जिल्द बिल्कुल ही जुदा होती है, तो इस रंग की तरफ माइल थे इब्ने अब्बास। लेकिन ज़्यादा जो रवायात में है सुमरा का कलेमा ये ज़्यादा मुनासिब रखता है, मुनासिबत रखता है। अला तहकीक अगर बात की जाए तो रंग में शदीदुल उदमा नहीं थे, बिल्कुल काला रंग नहीं था, लेकिन सांवला रंग उनका था। अच्छा, एक रवायत आपकी खिदमत में ज़िक्र करके इस मौजू को ख़त्म करते हैं, और फिर इंशाल्लाह इस मौजू के बकिया हिस्सा किसी और मौरिद में होगा। एक रवायत है अहले सुन्नत में मुमकिन है कि ज़ईफ़ुस सनद शुमार हो, लेकिन हमारे यहाँ शवाहिद और क़राइन की बुनियाद पर यह हदीस मोतबर शुमार होती है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरादा अन यंज़ुरा इला इब्राहीम फिल हिल्म ही, जो चाहता है कि इब्राहिम को उसके हिल्म में और सब्र में देखे, व इला नूह फी हुक्म ही, और नूह अलैहिस्सलाम को उनके हुक्म में देखे, व इला यूसुफ फी जमाल ही, और यूसुफ को उनके जमाल में देखे, फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, उसे चाहिए अली इब्न अबी तालिब की तरफ देखें। अंबिया की तमाम खसलतों को जम कर दें तो अली इब्न अबी तालिब की शख्सियत सामने आती है। लिहाजा खूबसूरती में मिसल यूसुफ थे, ना कि ये जो हुलिया अबू सुफियान और अम्र इब्न आस और इन लोगों का बयान किया गया वही इमाम अली अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक था। इसी के पर इस गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिही ताहिरीन।